पुकारा होता है।
श्री देवचंद्र जी पूछा,
श्री देव जी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा ठाकुर बात को इधर क्यों कहता है? तू सच्ची बात बता, तेरे दिल में है क्या और तेरी चाहना क्या है?
तुम देखो मैं क्यों ना देखूं?
आप क्या कह रही? मेरा ठाकुर कहते हैं, मेरे धामी, जब ऐसी बात है तो फिर जैसे आप परमात्मा को देखते हो और वर्णन करते हो कि मेरे से क्यों नहीं, मैं भी कहता हूँ कि मैं भी परमधाम को देखूं, मैं भी अखंड विराज को देखूं, मैं भी इंद्रमित्र पर को देखूं और देख करके तुम्हारी तरह से मैं चर्चा वर्णन करूं। आप देवचंद जी महाराज कहते हैं, भाई ये वस्तु मेरे बस की नहीं, ये जो वस्तु तू कह रहा है परमधाम क्यों नहीं दिखता और मैं कथा क्यों नहीं सुनाता, की बात नहीं है। तो अंदर जो बैठे बैठे यदि श्री राजी महाराज है, ये उनकी बस की बात है और ये हुक्म की बात है, हुक्म के हाथ में और हुक्म और हरी एक ही जगह बैठ सके। और अगर अभी चाहता है, मैंने इतने आगे बता दिया था कि मेरे तन खत्म होने के बाद, यानी जितने दिन राजी मेरे तन से नाम लेना चाहते हैं उतने दिन तक तो मेरे अंदर बैठेंगे और उसके बाद कुछ करके
वापस ले आओ, वो वापस आ जाएगा तो उसका धन
राज्य की सेवा मिलेगा और इस सेवा का बदल शोभा जो है वो तुम्हें मिलेगी। ये आकर के आदेश दे दिया। बस जैसे सतगुरुधारी देवचंद जी के मुख से बात निकली तुरंत मैं राज ठाकुर घर में गए और अर्घ जाने के वास्ते तैयारी कर ली।
श्री देवचंद जी ने कहा
बस जैसे ही कहा तुरंत उसको हुक्म। अब देवचंद नहीं मानते, अब इस बात से समझते हैं कि मेरे धाम के बस एकदम उनके मुख से निकला और चले की तैयारी। उस समय आज तो वही एरोप्लेन इत्यादि चलते समय केवल पानी के अंदर ही नाव चलते थे, हाथ चलते थे। रामनगर से अर्ब जाने के वास्ते 40 दिन तक नाव में बैठना पड़ता था। बस उस नाव में चलने के लिए तैयारी कर ली।
40 दिन में पहुंच गए।
40 दिन में नाव जो है लेकर के अर्ब के किनारे पर पहुंच गई।
तब
जो है बरारम ने अर्ब देश में बग गए।
देखो भाई मिले
अब आप चल रहे। तो गांव के भाई ने अपने मोटे भाई का भाई नाम बैठा पत्र लिख दिया कि लोग भाई ये एड्रेस है और आके मिलना। बराबर बरारम पहुंच गए और त्यां जाके खेते भाई का बोल पास किया और जब वो मिले तो उनको वो पत्री दी जो उनके छोटे भाई गांधी भाई ने लिख करके दी थी। अब खेते भाई ने जब देखा कि चलो कोई ना कोई तो मुझे भी संभाल करने के लिए आए है, बहुत उठ करके मिले और स्वागत किया।
बहुत सुखा पाया
खेता भाई, बहुत तुम जो गए कि मैं चलो ठीक है। अब दिन में सारा दिन मेरा ठाकुर उनके काम में जुटे, सारा दिन उनके काम में लगते हैं, उनके साथ तार व्यवहार करते हैं और डेली रिपोर्ट जो बुक्स का डेली का काम था केता भाई जी ने सारा मेरा ठाकुर को सौंप दिया। उस दिन से हर रोज का रोकड़ा बैलेंस शीट लेना देना जो कुछ बुक राइटिंग का काम होता था वो मेरा ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिया और इन बातों का काम का करें। रात्रि को बैठ करके खेते भाई को माया से निकालने के लिए चर्चा सुनाने लगे कि है केता भाई ये मनुष्य अपने को पैसा इकट्ठा करने के लिए मिला, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सिकंदर यूनान का बादशाह 16 वर्ष के अंदर वो सारे विश्व का विजेता बन गया, लेकिन इतना भी नसीब नहीं हुआ कि वो लौट करके वापस यूनान चला जाए। रास्ते में ही उसके सांस खत्म, मौत आई। डॉक्टर वैद्य तबीब हीरे जवाहरातों के भंडार थे पर कोई भी मौत से बचा नहीं सका। अब सिकंदर की आंख उगड़ी जब यम के दूत आ गए, तब देखा कि मैं सारे विश्व का रहा और अब मैं मरने लगा हूं, तो अपने वजीरों को क्या बोल दिया कि कफ के अंदर मेरा हाथ नहीं बंद, मेरा हाथ कफन से बाहर कर दो ताकि आंधली दुनिया जो पैसे की हिवस में सेठ अंधे हुए बैठे उनको इस बात की सूचना हो जाए कि सिकंदर जो सारे विश्व का मालिक था वो भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली लेके गया, कुछ लेके एको पैसा नया नहीं लेके गया, सब धरा रह गया। वजीर हाथी घोड़े राज सिंहासन और लाखों के थाल के द्वारा के अब ये बात बैठ बैठ के राय ठाकुर खेता भाई को समझाते हैं कि कितना तू धन इकट्ठा करेगा, छोड़ इसको ले चलकर सतगुरु महाराज के घर में साक्षात पार गुरु बख्शा की आए गए कुछ ज्ञान उनके चरणों में चल के सुन ले और अपनी आत्मा का कल्याण कर। अब रात को बैठ करके वो तो चर्चा सुनावे कि इसका जीव ही कुछ ना कुछ बन जाए, चर्चा सुनते सुनते ध्यान देना हाँ, हाँ, ऐसा तो करे खेता भी बैठे और बोले हाँ जैसे कई बार आप पर लोग बैठे तो यहाँ रहते हैं और घूमते घरों में या तो खेती में या फैक्ट्री में या वो फिर तो दो दिन की छुट्टी बाकी है परसों तो उसको जाना पड़ेगा, बैठे यहाँ और घूम रहे कहाँ। इस तरह से वो कहता भाई रात को बैठ तो जाता है चर्चा सुनने में पर मन उसका भूख रहता है इधर उधर। ये सब जी कहते हैं भाई क्या अब ये पूरा जीव ऐसा है सुना 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 के चचा थक गए, लेकिन उसको छींट लगी नहीं। वो बटवा 24 घंटे इतना माया में धसा हुआ था, तो एक दिन मैं राज ठाकुर को कह दिया कि मेरा ठाकुर तुम्हें मैं दिल की सच्ची बात आज बोलता हूँ कि ये मेरा धन जो है बड़े इकट्ठा कर लो, पर ये धर्म कार्य में लगने वाला मैंने बहुत खोटे कर्म करके, बहुत झूठ से, बहुत पाप से धन कमाया है। या तो ये गवर्नमेंट ले जाएगी, या इसको आग लग जाएगी, और या ये पानी में तो चले जाएगी। धर्म कार्य में बिना थके लगना, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं। मुझे पता है अगर मैंने किसी से 20 रुपया लेना होता था ना, तो चुपके से एक बिंदी और जीरो ऐड कर देता था, और साल के बाद वो अकाउंट करने आता था तो मैं उसको बोलता था तुम 200 रुपया बैलेंस है, देखो है तुम्हारा अंगूठा लगा है। अब बेचारी अनपढ़ जनता साल के बाद 20 का 200 बनाता हूँ, मेरा पाप छल ए कपट ए झूठ ए सब बेईमानी का धन है। तुम लाख यत्न कर लेना, ये धर्म कार्य में लगना नहीं। 4 वर्ष बर्बाद थे, 4 वर्ष तक बराबर मिलाई ठाकुर अरे चल चले, अरे वहां स्कूटर नहीं होते थे। फिर अरुण देश की रेती इलाका, कोई साधन नहीं है, सुबह से उठते हैं, पद यात्रा करते हैं, परिश्रम करते हैं, केवल राजीव राय के हुक्म का पालन करने के लिए इतनी बड़ी कठिनाई, और एक जान साहब के वजीर के लड़के हुए और इतने संकट सहे। इसको कहते हैं सतगुरु महाराज जी के चरणों की सेवा। कोई स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब नहीं। अब क्या हो गया, कार्य कारण तो होना ही था। महाराज ठाकुर किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे, पीछे से खेलता भाई कौन लगता नाम चल गया या नहीं, कोई अगर तो है नहीं, मृत्यु हो गई। अब लौट करके जब वापस आए तो क्या देखा, अभी डेड बॉडी तो पड़ी है, लेकिन वहां का जो हाकिम शेख सलाह उसका नाम था, वो बड़ा पापी और कठोर दिल था। उसको एक खबर नहीं थी कि इसका कोई भाई आया हुआ है। उसने अपने पटेदारों को सर्वेंट्स को क्या हुक्म दिया कि जितने माल गोदाम है सब पर सरकार की सील बोर लगा दो, इसका कोई मालिक नहीं। आगरा ठाकुर आए, उनकी अर्थी को शमशान घाट संस्कार किया, और अब नाव जा रही थी। गांधी भाई को और सतगुरु महाराज जी को चिट्ठी लिख करके भेज दिया कि खेता भाई हम डर गया है, कृपा करके मेरे पास किसी को भेजो ताकि हम इस धन को संभाल के ला सके। आप ध्यान देना, साथे सुना, चिट्ठी लिख दिया। अब इधर क्या हो गया कि जैसे चिट्ठी पहुंचती है जामनगर में, तो एक बिहारी जी और एक श्याम गांधी भाई के बड़े पुत्र श्याम जी, जिन्होंने कभी सतगुरु महाराज जी की चर्चा सुनी नहीं, तारतम और संबंध मूल को जानकारी, एक तो वह और दूसरे बिहारी जी महाराज, जिन्होंने आत्म का संबंध जाना नहीं, केवल देह का नाता जाना कि ये तो मेरे पिताजी। अब फिर गांगड़ी भाई उनको इतने लाड़ प्यार से पालते थे कि बिल्कुल वो देवचंद जी की आज्ञा में चलते ही नहीं, और आज भी चले जाओ चाकरे मंदिर, वो शिव जी की पिंडी रखी है जिस पर बिहारी जी महाराज जल चढ़ाते, नहीं देखी तो जाओ देख के आ। शिवजी की पिंडी पर उनकी मित्रता ऐसे था लोगों के साथ हो गई, बिहारी जी महाराज की जो शिव जी की उपासना करते थे और उनकी पिंडी पर जलते रहते थे। अब देवचंद जी महाराज के अंदर राजीव महाराज बैठे गए, उनको पता ही नहीं कि मेरा पुत्र या मेरी कन्या का कुछ है। तो 24 घंटे अपने राजीव राज की चर्चा में जब लगन अंदर राजी बैठ गए, आम राजी का के लड़के और लड़की को देखे, इसलिए उनको भी बिक्री विचार ठीक है जो है। वो शिवजी की पिंडी में जल चढ़ा रहे। अब जब ऐसी चिट्ठी महाराज ठाकुर की आई तो देवचंद जी ने भेजा बिहारी को और गांधी जी ने भाई ने भेजा श्याम जी को, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, दोनों एक जैसे इकट्ठे हुए पहुंच गए वहां। अब जब इतनी देर में वो आते अब ध्यान के साथ महाराज ठाकुर ने क्या किया कि वहां का जो हाकिम शेख सलाह था उसको जाकर के लिखित आदि किया कि हे महाराज ये मेरा भाई था और मैं 4 वर्ष से इधर रहता हूँ, सारे धन संपत्ति का हक मेरा है। अब शेख सलाह महाराज ठाकुर को देखकर एकदम गुस्से में आ गया, अरे तुम कहां से आ गए? कहने लगे हजूर जनता से पूछ लो मैं 4 वर्ष से इधर रहता हूँ और खेता भाई मेरा भाई कहता। आप शेख सलाह ने क्या क्या रात को लोग नगर में गांव में पहरा देते हैं पटे वाले, उनको बुला के बोला बेटा हम तुमको 5 रुपया इनाम देंगे, रात को क्या करना कापड़ का बोला बना के ऊपर केरोसिन डाल के और खेता भाई के मकान में डाल देना। अब यार आग लगी और सारे गुदान जो कापड़ का बना रखा था और सामान भरा रखा था सब आग लगी, फायर ब्रिगेड तो बंद की नहीं, सारे का सारा जल करके भाग गए। अब बचा क्या कि जहां आप विराज ठाकुर सोए हुए थे 18 रात्रि की मेहर हो गई कि 4 वर्षों की जो खुश थी और कैश हेड था वो नोट नहीं थी, वो सोने और चांदी की ईंटा थी, वो बच गया, बाकी सब खेला हो गया। अब बिहारी महाराज और श्याम जी पहुंचे और जा करके महाराज ठाकुर से मुलाकात किया, तब महाराज ठाकुर ने 4 वर्ष की पूरा परिश्रम कर करके जो थाली रखा गया था और बिहारी जी महाराज और श्याम को एक एक दिन की डेली रिपोर्ट सारा अकाउंट बुक्स के उनको समझा दिया, कहा महाराज 1 लाख कैश है और बाकी शेख सलाह में जला करके सारा सुंदर शादी। अब जिसका मन बाप से भरा है और जो दाइस से भरा है उसको निर्मल कौन करे, दोनों ने सारा कैश ले लिया जो कुछ भी सोने और चांदी का इच्छा था और सामान को सब लेकर के वापस जामनगर आते थे और रास्ते में प्लान क्या बना लिया कि भाई दोनों जने चोर का बाप का उन्होंने कहे दोनों ने एक जैसे हुए और क्या प्लान बनाया कि भाई ये जला नहीं है, ये तो महाराज ठाकुर ने जलाया नहीं, घास फूस रख दिया है और अच्छा अच्छा माल कहीं गायब हो गया। और इधर क्या बात गांधी जी भाई को जाके श्याम जी ने कहा कि महाराज ठाकुर चोर है, वो सारा धन खा गया, हमको कुछ नहीं किया, रस्ते में बैठ गया धन्यवाद किया। और उधर बिहारी जी महाराज ने देवचंद जी को जाके जाके बात कही तो देवचंद जी के साक्षात बिहारी महाराज ऐसी बात को माने कष्ट करके बिहारी जी को डांटा कि झूठ बोलता है, कभी जी कभी भी महाराज ठाकुर ऐसा कार्य कर नहीं सकते, अगर इसको धन खाना था तो उनके अपने पिता का धन क्या काम था, इतने बड़े मोटे भी निभर गए तो झूठ बोलता है और कभी भी महाराज ठाकुर ऐसा कार्य नहीं कर सकते, देवचंद जी के मन पर कुछ भी असर नहीं। और इधर गांधी भाई जिन्होंने गांधी के चरणों में अपने आप को छोड़ दिया सर्वस्व त्याग दिया सेवा करी अति करी जान दिया अपना धन करी, ऐसे गांधी भाई श्याम जी के कहने की बात कुछ भी स्वीकार नहीं किया कि तुम गलत कहते हो झूठ बोल रहे हो, महाराज ठाकुर के आने पर हकीकत का पता चलेगा। तब ये दोनों और कौन बिहारी जी और श्याम जी ने मिल करके बाल भाई को आगे लगाई उठाया कि बाल भाई ए बुआ हुई और क्या श्याम जी क्या लगती है बाल भाई हुई लगती उसको कह रहे हुई ए पिताजी तो बगैर बाबा हमारा कौन दुनिया में पल पोष करेगा, इनके बनने के बाद अंदर खेता भाई तो मर गया उसके बच्चे ये ही भाई सब का बोझ मेरे ऊपर आने वाला है, अब मैं राज ठाकुर जहां भर के समाता जा रहा है तू जान साहब के जवाब में जाकर के हरी उड़ा दो कि वो धन तुम्हें मिलना चाहिए, तुम धन लेओगे तो अपने भाइयों की संतान को पालोगे और अगर धन तुम्हारे पास नहीं होगा तो हमारा पालन पोषण कैसा करो। अब कोई थी कोई भाई ने सोचने लगी बात ठीक कहता है उनके मैं कभी आगे बात करी और जान साहब को जाकर के अरे कितने दिया के साहब मेरा भाई मर गया है और दूसरा भाई कहाँ मर गया है तो कैसे भी चलेगा भैया, इसलिए विराट ठाकुर सारा धन उसका हड़प कर गया है और अब जहाँ के जा रहा है वो धन उसको मिलना चाहिए, यदि मुझे लगे तो सरकार ले लेकिन नहीं दिया तो तुम जानते हो सरकार को पैसा बाहर पहले से इंतजाम रहते वहां पुलिस की चौकी बिठा दी। अब मेरा ठाकुर दिन रात परिश्रम करके किसी से 50%, किसी से 20%, किसी से 80%, जो कुछ भी प्राप्त हुआ खेता भाई का जो लेना था वो जहाज भर करके लिया। अब जैसे ही लेकर के आए तो वहां पकड़ लिया, ध्यान दो पकड़ करके राज ठाकुर को देते। अब दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया, राजा ने पूछा क्या मेरा ठाकुर ये सामान किसका है? तो साफ हिंदे वाले थे, उन्होंने कहा भाषा ये मेरा धन है, इस धन का मालिक या तो गांधी भाई है, उनके छोटे भाई को मैंने के लिए आ गया था, उसकी मृत्यु तो वहां हो गई, एक दूसरा इसका मालिक या तो उसका भाई है और या जिन्होंने मुझे भेजा था मेरे साथ, मेरा एक पैसा भी साहब ने इसके अंदर है। जब उन्होंने स्पष्ट ध्यान दे दिया तो राज दरबार वालों ने उनको
पठान के ऊपर बैठा, वो कह रहा है कि जरा
कौन कह रहे हैं हमारे मुल्क में इंसान नहीं होते, अल्लाह की कसम करके कहते हैं हम तुमको रोक कर लिख के देते हैं और तुम बादशाह के दरबार में जाना। लेकिन किस दिन जाना? जब ईद पढ़ने की जुमे के दिन बादशाह मिलेगा, वो इंतजाम होगा तमाम सेना के साथ होगी, जब दर्द दिन मिला रही और बादशाह की दूसरे बोलकर पहले फेंक देना और ये रुका हमारा के हाथ में देना और उसको क्या बोलना, हे बादशाह या तो इधर मेरे इंसान कर या वो ईद के अल्लाह तला तक पे बैठेगा तो तेरा जान फट कर इंसाफ कराऊंगा और ये लोग का उसके हाथ में देना बस अपने इंसाफ करेगा। अल्लाह की कसम करके कहते हमारे देश में इधर इंसाफ होते हैं। उसने इतने शब्द बादशाह के नाम से और मेरा ठाकुर के हाथ में अपना लेटर दे दिया कि ये रुका जा के बादशाह होते हैं। अब मेरा ठाकुर लौटे और बच्ची लेके आगे चले, सोचने लगे इस पठान का धन्यवाद तो कर देते और लौटे वापस देखा कोई नहीं, कोई बात नहीं। 16 तारीख गए आप उसके खड़े हो गए, जुम्मे वाले दिन बादशाह निकला और सेना तो बड़ी थी, सारे बड़े थे और बड़े तेज तलवार भाले लिए हुए थे, एकदम स्वामी बीच में से निकले और बादशाह का चेहरा झटका लग गई तो सेना एकदम आगे की तैयार हुई। बादशाह ने कहा खबर कोई आगे मत बढ़ो, अरबी भाषा में बोला ला तखफ या बनी ला बेमन तखफ मेरे तू डर बनी मेरे बेटी है बेटा खराब नहीं मैं क्या इंसाफ करूंगा, बोलो क्या बात है। अब पहले तो रुका रहते थे बादशाह ने करा फिर अपनी सारी तकलीफ बताई कि हजूर हम 4 साल से इधर रहते, एक तो मेरा भाई मर गया है और दूसरा शेख सदा ने सारी संपत्ति हड़प कर रही है, 2 महीने तेरे दरबार में भटकते हुए हो गए, तेरे दरबारियों ने किसी ने भी मेरी फरियाद सुनी नहीं और कोई मेरी अपील का पत्र नहीं लेने को तैयार। क्या लगे अच्छा घबरा नहीं, ये जो तुमने कसूर किया है पल्ला छटकने का ये भी तुमको क्षमा करता हूँ और कल प्रातः दरबार में जाकर सबसे पहले तेरा इंसाफ करूंगा क्योंकि अब तो मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ। बादशाह चला गया, नमाज पढ़ के आया लेकिन रात को नींद नहीं पड़ी, बार बार अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ मेरे अल्लाह ताला मुझको शक्ति और बुद्धि बख्शना मैं इस राही मुसाफर की फरियाद सुन सकूं क्योंकि आज दिन तक किसी ने भी मुझे अल्लाह ताला का वादा नहीं डाला जो स्वामी जी ने कह दिया था कि ऐ बादशाह या तो मेरा इधर इंसाफ करना नहीं तो जब तुम अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होगे तो मैं वहां भी तेरा पल्ला झटकूंगा और अल्लाह ताला से कहूंगा कि जब ये बादशाह था दुनिया में ये किसी का भी इंसाफ नहीं करता था, ये बात पढ़ा उसके बारे में था। अब प्रातः हुई दरबार में गया तो सोचने लगा बुलाऊं किसको क्योंकि उनका नाम पूछा ही नहीं था कि भाई तेरा नाम क्या है। तब एक ढिंडोरची को बुलाया और कहा के लाओ 2 सिपाही चौकीदार भेज दिए कि वो आदमी को बुला के लेके आओ जिसने कल मेरा पल्ला छटका था। तब ढिंडोरची बुलाता जाता है, स्वामी जी खड़े थे दोनों पकड़ करके सिपाही दरबार में ले आए। जब राजा ने देखा के ए बाबू से पकड़ के ले आए थे तब उनको डांटने लगे रे मूर्खो ये कोई चुप छोड़ रही है छोड़ दो। बड़ा आदर करके अपने पास सिंहासन पे कुर्सी लेकर बिठाया और पहले जैसे एक मित्र मित्र से बातें करता है ऐसी बातें की और व्यवहार कुशल पूछा। उसके बाद पूछा कि तुमने मेरे दरबार में फरियाद क्यों नहीं लगाई, तेरा इंसाफ हो जाता। तब स्वामी जी सोचने लगे जो देत कसाला तुम भला चाहिए नहीं तो कल क्या बोला था जब पल्ला झटका था कि तेरे दरबार में मैं 2 महीने भटकता रहा हूँ। आज सोचा कि अगर मेरे कहता कि तेरे दरबार में मेरी फरियाद नहीं सुनी तो इसको अभी ही नौकरी से निकाल देगा, अपने को क्या मिलेगा, अपने तो काम से मतलब है। तो क्या बोला क्या कह सकते कि ऐ अरब के बादशाह क्या तुम्हारे देश में बादशाह को फरियाद लगानी पड़ती है, हिंदुस्तान में ये रीति नहीं है, हिंदुस्तान में तो ये है कि बादशाह अगर बाजार में जाता हुए तो वही पल्ला झटक दिया है। बादशाह जी सुन ले जाओ अपने को ये तकलीफ है वो काम कर देता है, तो मैंने इसलिए तेरे दरबार में फरियाद लगाई, झूठ बोला उस पापी को बचाने के लिए जिसने 2 महीने तक है भटकाया। इतना व्यवहार कुशल देकर बादशाह मुझसे कहता है धन्य धन्य हिंदुस्तान के रहने वालों और राजी मुसाफर तुमने मुझको کو جیت لیا ہے. آپ درباری لال کا دیوان اپنی قلم سے حکم نامہ شیخ صلاح کو لکھا کہ او شیخ صلاح تو نے جو کھیتا بھائی کے سمپتی پر تالا لگا رکھا ہے ایک دم اس کو چھوڑ دینا نہیں تو تیرے پریوار سے پھنسی کے تختے پر لگاؤں گا. ایسا حکم نامہ اور ایک چوہدار لکھ کر کے دیا. تب مہراج ٹھاکر شیخ صلاح کے گھر آ گئے اور ترنت شیخ صلاح نے ساری سمپتی کی چابیاں دے دی. اس کو بڑا اپمان فیل ہوا. یہ آگ اس نے لگوائی تھی اور سب کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. اس کے بعد سارا مال متا اکٹھا کر کے گئے تو مال سارا راجہ نے لے لیا. اب جب ستگرو مہاراج جی کے چرنوں میں پرنام کرنے گئے تو انہوں نے پرنام سویکار کیا نہیں. دل جھوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ او میرے ستگرو مہاراج تم تو جانتے ہو میرے دھنی کہ میں چور نہیں ہوں. میں تو آپ کی سیوا کرنے کے لیے آنے میں کیا تھا. اور دھنی تم نے بھی مجھ کو چور بنا کے رکھ دیا ہے. کہاں چلے گئے سانوریا ٹھاکر کے پاس اور کوئی حل تھا. وہی بھائی کماتا تھا. اس کے پاس جب رہنے لگے تو کیا بریہا کیا. ایک ہی بریہا. پھر جب ہم سے جیل میں جائیں گے تو اتریں گے کھٹوتی کو پڑھ کے دیکھو. یہ دل میں دکھ اس سمے اندراتی کے تھا اور کیا کہا. دھنی میں بے قصور ہوں. آج دیوالی ہے. سب سنسان کے گھر دیے جلتے ہیں اور میرے گھر میں اندھیرا. اور دھنی یدی میں آپ کی امنا ہوں مجھے تم بلاؤ میں کبھی بھی چل کے تیرے پاس نہیں آؤں گی کیونکہ میرا قصور نہیں ہے. دھنی مجھے بلاؤ آپ پر بیٹھا چھے ایک پوری مائے سال بھر تک بریہا کر کر کے تڑپتے رہے. ہر ریتو کے حساب سے اپنے کو ایک میرہن انگنا سمجھ کر کے اپنے دھنی کو پکارا اور کیا کہا. دھنی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں. برج میں میں نے تم کو ہرایا. راس میں میں نے تم کو رامتوں میں ہرایا اور اب بھی میں جیتوں گی. میں بے گناہ ہوں اور تم کو مجھے بلانا پڑے گا. میں بن بلائے کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی. سال ہو گیا جب تڑپتے تڑپتے تو سنوریا ٹھاکر کی جو پتنی یعنی بھابھی تھی وہ تانا مارتی ہے ٹاٹ کستی ہے رائے ٹھاکر اسی ستگرو مہاراج کے پیچھے اور گانگری بھائی کے پیچھے سنوریا بھائی کو قتل کرنے آیا تھا. وہ پہلے یاد ہے کہ بھول گیا. ارے بھائی جب میں رائے ٹھاکر اور گوردھن ٹھاکر اپنے بڑے بھائی کو قتل نہیں کرنے آئے تھے آپ اسی کے گھر میں بھوجن کر رہے ہیں تو اس کی پتنی جو ہے بھابھی ٹاٹ کستی ہے کہ بیٹا اگر اس سمے بھائی کو قتل کر دیتے آج کس کا کمایا ہوا کھاتے. اور جس ستگرو مہاراج کے پیچھے لگے تھے اس نے تم کو چور بنا کر کے سمان سے نکال دیا ہے اور تم نے تو اپنے پتا کیشو ٹھاکر کی بھی ہے رکھ کھا دی ہے. تب دل میں اتنی چوٹ لگی کہ بھائی کا گھر بھی چھوڑ کر کے حلال دیش دلالی کے پاس جا کر کے نوکری کر لیا. 1709 میں 10 میں پہنچ گئے. اب 2 سال نوکری کرتے ہیں اور ادھر سمے آ جاتا ہے تو بلائے گا کون. شری راجیو رائے ستگرو مہاراج ہی بلائیں گے. کیسے بلایا کیسے واپس آئے کیسے پھر دیو چندی کے تن کو چھوڑ کر راجی مہاراج مہاراج ٹھاکر کے تن میں بیٹھتے ہیں اور جاگنی ابھیان شروع ہوتا ہے. جب ہم سے میکر کی چرچا میں پہنچیں گے اور ان کے تن میں براجمان ہوئیں گے تب وہ کیا کہلائیں گے پران. میں چرچا اب کل کیونکہ سمے ہو گیا.
جن کے لکھی انگورا
ہوا ہے مجھ کو رہے ہوا سمگر
सरदार उठ करके अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और उसके बाद शांति से अपने जगह पर प्रसाद के लिए बैठेंगे।